तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्टी के प्रथम दिवस पर हम सबको तपस्या के फाउंडेशन के प्रति ध्यान खिंचवाने और तपस्या को मैच्योर बनाने के लिए हम सबके बीच पधारी हैं परम आदरणीय राजयोगिनी गीता बहन जी, नेपाल एवं दिल्ली के इस ग्रुप में। गीता दीदी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पिछले 5 दशकों से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में व्यतीत कर रही हैं। गुजरात में बड़ौदा, भावनगर और अन्य स्थानों पर सेवा करके, ज्ञान सरोवर में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके वर्तमान समय हमारे यज्ञ की एक वरिष्ठ वक्ता के रूप में, अनुभवी राजयोगिनी टीचर के रूप में आप अपनी सेवाएं शांतिवन स्थित होकर के दे रही है। आपने बाल्यकाल से ही बाबा का ज्ञान आपको परिवार के साथ मिला और समग्र गुजरात में 10th स्टैंडर्ड में प्रथम आने के बावजूद भी आपने तुरंत ही 14 साल की छोटी आयु में अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वर्तमान समय आप बिजनेस इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं। कुमारियों को टीचर्स बनाने की जो ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग, उसकी भी संयोजिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हम सबको सीखनी चाहिए, और वो है मुरली का गहन अध्ययन, मनन, चिंतन। जब भी आप गीता बहन को सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा वो एग्जाम्पल्स इधर उधर के छोड़कर मुरली की बातें, बाबा की बातें, उसकी मैच्योरिटी और उसकी डेप्थ को आपने पकड़ा है। तो ऐसी अनुभवी बहन आज हमारे भट्टी के प्रथम क्लास के लिए हमको अवेलेबल हैं, वो हमारा बहुत 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 परम सौभाग्य है। तो गीता बहन, आपका इस ग्रुप में हम स्वागत भी करते हैं, और चलो हम एकाग्र होकर के बहुत ध्यान से पवित्रता की पराकाष्ठा के इस विषय को, जिसके साथ नेगेटिविटी की अलविदा भी है, इस विषय को समझेंगे, सुनेंगे। परम आदरणीय गीता बहन जी, ओम शांति। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आए हैं, है? आप तो हिमालय की गोद में रहते हैं, जहाँ बहुत तपस्वी लोग होते हैं, कहाँ कहाँ गिरी कंदराओं में लोग तपस्या करते हैं। और ठीक पूरब से आकर पश्चिम में
पहाड़ी पर पहुंचे हैं आप सब। जहां बाबा हम बच्चों को सच्ची तपस्या सिखाते हैं। ये बहुत ही महानता की बात है कि हम सभी ने कलयुग के वातावरण के बीच योगी जीवन अपनाया है, खुद ही अपनी पीठ थपथपाइए, अपने को शाबाशी दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी महानता की बात है। कलयुग के कोई एक लक्षण भी शास्त्रों में जो बताते हैं कि ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग कर देते थे, और आज जहां पूरे कलयुगी लक्षण हैं, माया का पूरा विस्तार है, उस वातावरण में बाबा के बच्चों ने पवित्र योगी जीवन अपनाया है। ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति, बाबा की मदद, पर उसको स्वीकार करना और निर्णय कर लेना कि अब हमारा यह जीवन पवित्र और योगी जीवन, किया है ना सभी ने निर्णय, और तपस्या का फाउंडेशन पवित्रता है, पवित्र बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकती है। बाबा सदा कहते हैं कि सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र बुद्धि बाबा से लग सकती है, विषयी बुद्धि तो भटकती है, चंचल होती है, क्योंकि विषयी वासना भोगने से इच्छाएं और शक्तिशाली और विकारी पावरफुल बनते हैं। बार बार वो इच्छाएं बनी रहेगी, बाबा ने पहला ही पाठ ऐसा सिखाया कि तुम देह से अलग आत्मा हो, और हर एक आत्मा है, इस रूहानी भाई भाई की दृष्टि आने से जीवन में पवित्रता आ गई। आज लाखों बाबा के बच्चे हैं जो गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं। पवित्र रहना अपने आप में बड़ी बात है ही, और उसमें भी गृहस्थ में रह के पवित्र रहना और बड़ी बात है। जो सन्यासी नहीं कर पाए है ना, वो तो घर बार छोड़कर पवित्र रहे, पर बाबा ने ऐसी दृष्टि वृत्ति स्मृति बदल दी कि आज ग्रस्त कमल बन गया, ग्रस्त आश्रम बन गया। हमारी तपस्या ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। जो पूरा जीवन तपस्या करने पर भी नहीं धारण कर पाते, हमारी तपस्या ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। और बाबा कहते हैं ना, कोई हठ दमन से नहीं, दवाइयों से नहीं, समझ पूर्वक स्व परिवर्तन करके। ऐसा ज्ञानी योगी पवित्र जीवन बनाकर अब हम और पुरुषार्थ कर रहे है ना। हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हो गया, शुरू हुआ, क्योंकि हमारी मंजिल है ब्रह्माचारी बनना। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मचारी बनकर फिर भी हम सब नित्य ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, यही लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना हम सभी, कि थोड़ा बहुत नहीं, इसके उसके जैसा नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। ड्रामा की नंबर वन आत्मा, जो संगम युग में भी नंबर वन संपूर्ण बनी। शिव बाबा भी कहते हैं, मेरा मुख्य कार्य पतितों को पावन बनाना है, मैं इसके लिए आया हूं। बाकी तो साइड बाय साइड प्राप्तियां है, पर बाबा कहता है मेरा मुख्य कार्य ये है पतितों को पावन बनाना। तो इस लक्ष्य को रोज रिवाइज करना है। बाबा कहते हैं रोज मेरे सामने आकर बैठते हो मुरली क्लास में, योग में, तो ये लक्ष्य रिवाइज करना है। रोज खुद खुद को पक्का कराना है कि बनना है ना बाप समान। खुद खुद को अंडरलाइन कराओ, किसी भी कारण से बाबा कहते हैं लक्ष्य कमजोर नहीं बनना चाहिए। इसलिए बाबा मुरली में भी अनेक बार हमें याद कराते हैं। सिंपल शब्दों में बाबा कहते हैं कि सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रख, अपने बेडरूम में लक्ष्मी नारायण का चित्र रख और रोज देखो कि कहां तक इनके जैसा बने। क्योंकि लक्ष्य मजबूत होगा तो ऐसे लक्षण धारण करने का तीव्र पुरुषार्थ चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई इतना ही बहुत है, हम ग्रस्त में रहते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, ऐसे नहीं सोचना। ब्रह्मा बाबा भी तो ग्रस्ती था ना, अदर कुमार था, परिवार वाली आत्मा थी। ब्रह्मा बनने के बाद तो डबल परिवार हो गया, लौकिक और अलौकिक, और जवाबदारी बढ़ गई। तो नंबर वन संपूर्ण जो बना वो भी तो गृहस्थी है ना ब्रह्मा बाबा, वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसलिए ये जब बन रहे हैं तो ये कमजोर संकल्प ना आए कि जितना हो सकेगा बनेंगे, ग्रस्त में हैं, कितनी बातें हैं, है ना, ये सारे विचार कमजोर बनाते हैं। हमें तो बाबा बना रहा है, हमें तो सिर्फ बनने के लिए तैयार रहना है, जो कहे वो करते जाना है। मुश्किल तो भक्ति में था क्योंकि ज्ञान नहीं था, अपने आप मेहनत करते थे, उसमें भी किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, कोई कहे ऐसा करो, कोई कहे ऐसा करो, उसमें और ही भटक गए, मेहनत लगी। अब तो मेहनत की बात ही नहीं है ना, आदि से अंत तक पुरुषार्थी से परिपक्व बनने तक की हर बात बाबा हमें बता रहा है। सिर्फ इच्छा नहीं बदलनी, ये इच्छा शक्ति बनी रहे कि बस बाबा जैसा बनना है। अगर वो दृढ़ संकल्प है तो अपने आप अपवित्रता का कोई भी सूक्ष्म स्वरूप भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं ना कि फिर वो देह दृष्टि भी अच्छी नहीं लगती। रूहानी दृष्टि से देखना है। जैसे बाबा ने पाठ पक्का किया ना, बाबा के हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि बाबा ने ये आत्मा का पाठ पक्का किया, परिवार की हर संबंध वाली आत्मा को रूहानी दृष्टि से देखा। बाबा लिखते थे, पता है ना, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा लिखते थे ना ऐसे, हम भी इस पाठ को पक्का करें। हम भी इस पाठ को पक्का करें कि परिवार में हम एक दो को देह संबंध की दृष्टि से न देखें, रूहानी दृष्टि से देखें। ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उस नजर और मर्यादा से देखें। आज एक ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, किस दृष्टि से देखते? ऐसे हम सब भी कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है ना, प्रैक्टिकली भी आत्मा आत्मा भाई भाई तो है ही, पर प्रैक्टिकली भी अब हम क्या है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। इस अलौकिक जन्म में बाबा ने किसी को भी अधर कुमार अधर कुमारी नहीं बनाया। हर एक क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं? नियम मर्यादा से, रूहानियत से व्यवहार करते हैं ना? ऐसे ही घर में भी हमें एक दो के साथ इसी दृष्टि वृत्ति से व्यवहार करते हैं। क्योंकि कर्म में ब्रह्मचर्य धारण हो गया है, अब हम अपने और आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप में भी पवित्रता को धारण कर रहे हैं। कर्म के बाद वाणी है ना? हमारे शब्दों में भी पवित्रता हो, ऐसे दैहिक भाव वाले शब्द ना बोले। अगर आप संस्कृत साहित्य पढ़ें तो उसमें पधारिए देवी जी है ना, कितना उत्तम संबोधन करते थे एक दो को, ऊंची नजर से देखते थे। भले हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया की रीति से तो रहना है, पर हमारे भाव तो हम शुद्ध बना सकते हैं। एक दो के साथ देह संबंध में क्योंकि आपको घर में ही रहना है, बाबा ने आपको कार्य दिया है ट्रस्टी बनकर रहना, निमित मात्र ग्रस्त में कमल फूल रहना है। तो परिवार के जो भी सदस्य है, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे और संबंधों का विस्तार, तो देह संबंध की दृष्टि से नहीं परंतु अलौकिक संबंध रूहानी दृष्टि से एक दो को देखना, बात करना, व्यवहार करना। तो हमारे शब्दों में दैहिक भाव नहीं आएगा, वाणी पर भी हमारा संयम है, जो आत्मा बाबा की याद में जितना गहरा सुंदर अनुभव करती है, जो ऊंची अलौकिक प्राप्ति करती है, उनकी वाणी में संयम आ जाता है, उनके मुख से हल्के शब्द नहीं निकले। बाबा कहते हैं ना, वाणी वरदानी बन जाएगी, मुख से अमृत निकलेगा, रत्न निकलेंगे। माना लौकिक दैहिक सांसारिक भाव वाली बातें नहीं निकलेगी क्योंकि हम उस ऊंचाई में टिके हुए हैं, है ना, उस सुंदर अनुभव में रहे हुए हैं, तो मुख से हल्की नीची स्थूल बातें नहीं निकली। आज भी बाबा ने क्या कहा, एक एक वाक्य कैसे हो, महावाक्य हो, व्यर्थ ना हो। हम उतनी ऊंची अलौकिक स्थिति में रहते हैं तो अपने आप हमारे शब्द भी वैल्यूएबल होंगे। और उसके आगे बाबा कहता है ना कि अब इस मुख से बाप की महिमा करना है। बाबा तो स्पष्ट कहते हैं और कोई महिमा लायक नहीं, एक बाप की ही महिमा गानी है। और ये सही बात भी है ना, बेशक हम महान आत्माओं से अच्छाइयां सीखें, विशेषताएं सीखें, उनकी अच्छाइयों को रिस्पेक्ट करें, सम्मान दें, लेकिन बुद्धि में याद रहे कि इन सब को भी महान बनाने वाला तो कौन है? बाबा है ना। तो कोई आत्मा के गुणों पर भी फिदा नहीं होना है, गुण सीखने हैं पर उस पर फिदा नहीं हो जाना है, नहीं तो आप उसी में अटक जाएंगे। मुश्किल से तो गुरुओं की जंजीर से निकले, अब कोई आत्मा में तो नहीं अटकना है ना हमें। नंबर वन ब्रह्मा बाबा भी स्पष्ट कहते हैं मुझे याद नहीं करो, तो और कोई आत्माओं में अटकने की तो बात ही नहीं है ना। अब तो बाबा का कितना सुंदर महावाक्य है कि न किसी के गुणों पर फिदा होना है, न किसी के अवगुणों से घृणा करनी। बाबा ने हमारी घृणा की क्या? कितने अवगुण हमारे में भरे पड़े थे अंतिम जन्म की पतित आत्माएं, पर बाबा ने हमारी घृणा की तो फिर हम कैसे कर सकते? जैसे बाबा ने सबको प्यार से चलाया, ऊंची नजर से देखा, तो हमें भी सबको ऊंची नजर से देखना है और प्यार से चलना और चलाना है। तो हम आत्माओं में नहीं अटकेंगे, हमारी बुद्धि सदा ऊंचाई में रहेगी, बाबा में रहेगी। प्रभाव में आना ये भी एक, क्योंकि प्रभाव में आने के बाद ही वो स्टेप शुरू होते हैं कि फिर झुकाव होगा। पहले हम प्रभावित हो जाते हैं उनके ज्ञान से, गुण से, सुंदरता से, पोस्ट पोजीशन पावर से। फिर जिससे प्रभावित होंगे वहां हमारा झुकाव होगा, टाइम ज्यादा देंगे, बात करने का मन होगा, है ना, उससे देखने का मन होगा, मिलने का मन होगा, फिर लगाव होता जाता है। वही फिर अपवित्रता शुरू हो जाती है, वही आत्माओं में फंसना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा को इतना अच्छी तरह से समझना है, जानना है, पहचानना है कि और किसी के प्रभाव में हम अटक नहीं जाएं। बताया ना कि पवित्रता की पराकाष्ठा पानी है, तो अपवित्रता की शुरुआत प्रभाव से होती है। प्रभाव, झुकाव, लगाव, फिर देह भाव, वहीं तो अपवित्रता आती। तो बाबा कहते हैं बाप जैसा और कोई हो नहीं सकता है इस दुनिया, बाबा जैसा ज्ञान और कोई दे नहीं सकता है, बाबा जैसा शुद्ध प्यार कोई कर नहीं सकता है, बाबा जैसा हर क्षण का साथी और कोई हो नहीं सकता है, बाबा जैसा सुखी हमें और कोई बना नहीं सकता। जितना बाबा को अच्छी तरह से हम पहचानेंगे तो बुद्धि कोई देहधारी से प्रभावित नहीं होगी, उस प्रभाव में अटक नहीं जाएगी। बेशक हम एप्रिशिएट करेंगे कि बाबा के ये विशेष रत्न है, ये सर्विसेबल रत्न है, ये निमित्त रत्न है, ये जिम्मेवार आत्माएं हैं, आत्माओं को हम पहचानेंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे, सीखेंगे भी, पर अटकना नहीं है। बाबा माना बाबा बस, और कोई अल्टरनेट बाबा का हो नहीं सकता है, तो हमारा योग, कल भी बाबा ने कहा ना, रूहानी ड्रिल क्या है, कल क्या बताया था बाबा ने कि सब संग तोड़ एक संग जोड़ना, एक से प्रीत लगाना। वही तपस्या है। हमारी तपस्या कोई देह दमन की थोड़ी है, हमारी तपस्या ही सूक्ष्म है ना। स्थूल होती तो बहुत लोग कर लेते। अगर बाबा कहता कि भाई जो 5000 किलोमीटर की पदयात्रा करेगा वो देवता बनेगा, तो हर कोई कर लेते है ना, बहुत लोग कर लेते स्थूल। बाबा कह देता कि जो 100 सेंटर खोलेगा वो ये नहीं, बाबा ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ है ना कि और कोई बातें इसमें चल ही नहीं सकती। इसलिए एक बाबा दूसरा न कोई, ये है सभी आत्माओं के प्रभाव से मुक्त रहना। जैसे लौकिक में शादीशुदा से यही अपेक्षा रखते हैं ना कि भाई यही तुम्हारी पत्नी है, यही तुम्हारा पति है, अब इसके अलावा और किसी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लौकिक में भी क्या सिखाते, आज की परिस्थिति अलग है कि भाई की बुद्धि कहीं और है, बहन की बुद्धि कहीं और है ना। कलयुगी दुनिया के हाल तो ऐसे हैं, पर आज से 40-50 साल पहले तक भी ये धारणाएं सबके जीवन में रही हैं और उसको वो लोग पतिव्रता पत्नी व्रता कहते हैं ना। जिससे जीवन जोड़ा संबंध जोड़ा इसके अलावा और किसी में बुद्धि जाती है तो उसको बेवफाई कहते हैं ना। पहले बुद्धि जाती है फिर सब कुछ जाता है ना। धीरे धीरे मन जाता है बुद्धि जाती है समय धन चीजें बातें सब शुरू होता है ना। तो हम सब ने भी जीवन किससे जोड़ा है? पीछे वाले बोलो। हाँ, हमने सिर्फ बुद्धि योग नहीं जोड़ा है, हमने पूरा जीवन बाबा से जोड़ा है ऐसा? ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धि योग, प्रैक्टिकल हमने जीवन बाबा से जोड़ा है। माना अब हमारे मन वचन कर्म बाबा के लिए। तो एक बाबा के सिवाय और किसी के प्रभाव में मन बुद्धि जाते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि लाइन क्लियर नहीं है। कहते हैं ना बाबा कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। फिर बाबा साथी नहीं बनते। कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई बाबा क्यों नहीं मदद करते, पर बहुत सूक्ष्म चीज है। आज भी बाबा ने वरदान में कहा ना कि सब कुछ बाप के हवाले माना, जरा भी मनमत की ऑथोरिटी नहीं, जरा भी श्रीमत के अलावा यूज नहीं करना। इसलिए ये भी हमें रोज पक्का रहे कि मैंने अपना जीवन बाबा से जोड़ा है। हम पिता व्रता है, परमात्मा व्रता है ना? अविनाशी अमरनाथ हमारा पति परमेश्वर है। हम आत्माएं सजनिया है। ये पाठ बहुत पक्का होना चाहिए। संगम युग में सभी सजनी है भाई भी है ना? आत्मा सजनी है ना? साजन एक शिव बाबा है, मीराबाई जब अपना ये चित्तौड़ राजस्थान छोड़कर, क्योंकि उसने फिर साधुओं की संगत की वृंदावन चली गई, उसको तो प्यार था ना कृष्ण से, तो बस जीवन उसी भजन में दर्शन में कीर्तन में ही बिताना चाहती थी, तो वृंदावन चली गई। वहां सभी साधु सन्यासी थे, तो किसी ने कोई साधु संत ने बोला कि भाई यहां तो सारे पुरुष है, तुम इसके बीच में आके क्या करेगी? तब उसने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में कृष्ण ही पुरुष है,
बाकी सब उसकी गोपियां। आप अभी तक पुरुष बन के बैठे हुए हैं? पुरुष तो एक कृष्ण ही है उनके भक्ति के अर्थ में। माना कितना देह भान मिटाना होता है, ये प्रैक्टिकल संगम युग में है कि एक परम पुरुष है हम सबका अविनाशी साजन, और हम सभी आत्माएं सजनिया है, निराकार को निराकारी सजनी चाहिए। बाबा कहते हैं तो हमारे सूक्ष्म भावों में, भावनाओं में शुद्धि होंगी। बताया ना कि अब हम सूक्ष्म पुरुषार्थी, सिर्फ चार बातें गिनती करके खुश नहीं हो जाना है कि हम पवित्र रहते हैं, शुद्धन खाते हैं, रोज क्लास करते हैं, होटलों में नहीं जाते हैं, बस इतना ही करना है क्या? वो तो हमारे प्राइमरी नियम है ना। इस स्कूल के एडमिशन के ये तो नियम है ना कि देवता बनने का पुरुषार्थ वो ही कर सकता है जो ये पहले चार नियम पालन करता है। पर देवता बनना माना तो क्या महिमा गाते है? तो आता है ना उसमें संपूर्ण निर्विकारी, माना हम पुरुषार्थी हैं कि कोई भी विकार का अंश न रहे। हम तो इस बात के पुरुषार्थी हैं क्योंकि विकार माना विकार, कोई भी विकार अच्छा नहीं हो सकता है। भाई काम क्रोध महाशत्रु है, पर बाकी भी कोई अच्छे थोड़ी है। भाई लोभ अच्छा है, मोह अच्छा है, ऐसा कोई कहेगा? कि ये काम क्रोध खतरनाक है, बाकी लोभ मोह तो ठीक है, ऐसा कोई कहेंगे? हाँ, पांचों ही खतरनाक है। बाबा के बनने के बाद पवित्रता नहीं अपनाते हैं तो वो पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते, उसकी पढ़ाई आगे ही नहीं चलेगी। पहला पाठ है देह भान भूलो, खुद को आत्मा समझो। ये हमारा प्रथम पाठ है। अब जो काम वासना के वश होता है, ब्राह्मण बनकर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते, पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते। जब देह के भान को भूलना है तो देह को भोगने की तो बात ही नहीं है ना। वो तो यहाँ एडमिट हो ही नहीं सकता है इस पढ़ाई में। इसलिए तो भगवान ने पहले ही ये धारणा, देखो पवित्रता फाउंडेशन है, आप देखो दुनिया में लोगों में कई बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे मैनर्स है, बहुत अच्छे तौर तरीके हैं, अज्ञानी हैं पर कई विशेषताएं होती, पर पवित्रता नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है, तो अपनी विशेषताओं का सही उपयोग नहीं कर सकते। पवित्रता तो फाउंडेशन है, वो हर विशेषता को भी डिविनाइज करती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर हम गुस्सा करते रहते हैं तो क्या नुकसान होता है? हम ईश्वरीय परिवार के प्यार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वरीय परिवार का प्यार उससे नहीं मिलेगा। हर कोई कहेंगे कि हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते, हम अपने आप सेवा कर लेंगे पर हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते, सब उनसे दूर हो जाएंगे। परिवार में भी अनुभव होगा ना, बहुत गुस्सा आप करते हैं, आप घर में आएंगे, बीवी बच्चे दूसरे रूम में चले जाएंगे कि भाई शेर आ गया, हाँ तो वो दूसरे रूम में भाग जाएंगे, कोई सामने नहीं आएगा क्योंकि पता नहीं कब बरस पड़े, गुस्सा कर दे, तो आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। हमें तो आत्माओं का सहयोग चाहिए ना, संगम युग में पुरुषार्थ में भी सहयोग चाहिए, सेवा में भी सहयोग चाहिए। जो ज्ञानी तो आत्मा बन के लोभ करते हैं वो भाग्य नहीं बना सकेंगे, क्योंकि धन साधन होते हुए वो सेवा में लगा नहीं सकेंगे, लोभ लालच है, इकट्ठा करते रहेंगे। भगवान को सहयोग नहीं देंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? कर्ण दो तो मन मिलेगा ना, समझे बात को? एक कण कहते हैं ना अनाज का, भाई कण दो तो मन मिलेगा ना, मन माना समझे, अनेक गुना, 20 किलो को बोलते हैं ना मन, 40 किलो को, अच्छा माना प्रकृति में भी देखो आप बीज बोएंगे तो अनेक गुना होके मिलेगा। तो बाबा भी क्या कहता है, कखपन दो तो लखपन मिले, ऐसे ही नहीं मिल सकता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं दूं फिर तो सबको देना पड़े, सारे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, फिर तो सबको देना पड़ेगा, फिर तो पुरुषार्थ का महत्व क्या रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कखपन दो तो लखपन मिलेगा। बाबा को अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। आप कमाते हैं, पांच खाते हैं, तो छठवां बाबा का भी हिस्सा निकालो। बाबा के बनने के बाद मोह में फंसे रहेंगे, कोई ना कोई देह संबंध में मोह रहता है। अगर मोह में फंसे रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान, ईश्वर का प्यार नहीं मिलेगा। जैसे क्रोध करने वाला आत्माओं का प्यार नहीं पा सकता, मोह में जो फंसा रहेगा वो परमात्मा का प्यार नहीं पा सकता। क्योंकि जिसमें मोह होगा बुद्धि वहीं अटक गई ना, जाल में फंस गई, उसकी बुद्धि ऊपर उठेगी नहीं, बाबा तक पहुंचेगी ही। और अभिमान आया माना उतरती कला शुरू हुई, गिरावट शुरू हुई। कोई भी सेवा, कोई भी विशेषता, कोई भी गुण कला का अभिमान आया माना अमृत में जहर की बूंद गिर गई, वो गुण अवगुण हो जाता है। मान लो मैं टोली बहुत अच्छी बनाती और मैं सेंटर में मैं ही बनाती हूं, पर अगर मुझे अभिमान आ जाएगा कि मेरे सिवाय और कोई टोली बना नहीं सकता है, मैं ही अच्छी बनाती हूं, अभिमान आने से अकड़पन आएगा। फिर हम देखेंगे, देखती हूं ना कौन टोली बनाता है, मेरे जैसी किसी को आती नहीं तो हम टाइम पर रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कि अब देखती हूं ना कौन टोली बनाता है। तो बाबा कहते हैं ना कि गुण क्या बन गया, अवगुण हो गया, अभिमान के कारण अवगुण हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकार अच्छा नहीं, कोई भी विकार का अंश नहीं। टोटल मरना है ना कलयुगी संस्कार से मरना है, और अब सतयुगी संस्कारों से या योगी संस्कारों से जीना है। इसको कहेंगे नया जन्म, अलौकिक जन्म। संस्कार में गंदगी होगी तो मनसा तूफान उठते रहेंगे। कहते हैं मन में गंदे विचार आते हैं, मन में बहुत तूफान उठते हैं, संकल्प खराब आते हैं, स्वप्न खराब आते हैं। क्योंकि संस्कार में गंदगी होगी तो मनसा में तूफान लाएगी। वे गंदगी होगी तो बदबू तो फैलेगी ना, इसलिए अंत तक पुरुषार्थी बनना है। संपूर्ण बनने तक हमें लगे रहना है, थकना नहीं है। थक तो नहीं जाते हो ना, सिर्फ सेवा में अथक नहीं परंतु संस्कार परिवर्तन में भी अथक, क्योंकि हम संपूर्णता लाना चाहते हैं ना, परफेक्शन लाना चाहते हैं। बनना ही है, करना ही है, तो आधा अधूरा क्यों करना है? ढीला ढाला कमजोर क्यों बनना है? बनाई है तो फिर जिगर से लगना है ना। बाबा कहते हैं ना, पूरी ताकत से पुरुषार्थ करना, 200 नाखूनों को लगाना है। तो क्या विचार है सबका? हाँ बोलो भाई बहने, नेपाल के भाई बहने बोलो। इसमें बाबा कहते हैं ना, आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, ढीला कमजोर नहीं, पावरफुल है ना। और इसमें खुद ही पावरफुल बनना होता है, क्योंकि हमारा अपना सूक्ष्म में क्या है, कैसा है, वो तो हम ही जानते हैं। ये पुरुषार्थ कोई बाहरी तो नहीं है, आंतरिक है ना। तो खुद को ही जागृत रहना है, दृढ़ बनना है। और जो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, उनको फुर्सत ही नहीं है और कोई नेगेटिविटी में जाने की। उसको फुर्सत नहीं है किसी के अवगुण देखने की, निंदा करने की कि मधुबन वाले क्या करते हैं, सेंटर वाले क्या करते हैं, फलाना परिवार क्या। उनको फुर्सत ही नहीं है ना ये पंचायत में जाने की। हम खुद ही बन जाएं तो बहुत है ना। और दिल्ली के भाई बहने हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। तो क्या विचार है दिल्ली वालों का भी? क्या विचार है माताएं बताओ? पूरा पुरुषार्थ करना है ना, दौड़ी लगा उड़ना है। बाबा कहते हैं उड़ना है ना। नीची हल्की व्यर्थ तेरी मेरी बातों में नहीं जाना है। उसमें गए तो खुद को देखना भूल गए ना, खुद पर ध्यान ही नहीं रहा, दूसरों को ठीक करने में अपना ही बिगड़ गया सब कुछ। वो तो ड्रामा में सीख लिया ना पाठ। अब संगम युग में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो नेगेटिविटी तो अपने आप खत्म होती है। हमें तो अपने लक्ष्य में फोकस रहना है, अपने बाबा टीचर को याद रखना है और अपनी पढ़ाई और सेवा। बस खुद भी लगे रहो, दूसरे को भी उसी में ही लगा के रखना है। ओम शांति।
ओम शांति। मैं समझती हूँ अभी 3 दिन स्वयं को, जैसे आदरणीय गीता बहन ने कहा, हमें स्वयं के पीछे पड़ना है, स्वयं को ऐसे तैयार करना है कि वहां अपने स्थान पर जाकर भी तपस्या की स्पीड ऐसी ही ऐसी रहे, बनी हुई रहे। गीता बहन का बहुत 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 आभार मानते हैं। ओम शांति।